الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ احزاب سے سٹارٹ کرتے ہیں آنورڈز. یہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 33 نمبر پہ سورت ہے, 33rd نمبر پہ قرآن پاک میں ہے, اور نازل ہونے کے اعتبار سے دس از دا 90th سورہ, وچ مینس 90 نمبر پہ یہ سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی. اس صورت میں ٹوٹل 73 یعنی 73 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں. اسے مین وجہ جو احزاب کہنے کی, احزاب کہتے ہیں ایک جماعت کو یعنی ایک گروہ کو یا بنچ آف پیپل جس کو کہتے ہیں, تو اس میں اس طرح کی بہت ساری ڈفرینٹ جماعتیں تھیں جو مشرکین کے بھی پاس ساتھ جماعتیں تھیں, مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ جو جیو قبائل تھے انہوں نے اگریمنٹس کیے تھے, تو اس بارے میں آگے بھی چل کے آئے گا ذکر. بہرحال اس میں یہ بہت ساری, کیونکہ جماعتوں کے ذکر ایک سارٹ آف آتا ہے, مشرقین کے ساتھ بھی بہت ساری جماعتوں کے معاہدے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے, اینی ہاؤ تو اسی نسبت سے اسے احزاب کہا جاتا ہے. اس میں زیادہ تر ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے آیت نمبر 22 سے آن ورڈس 27 تک تقریباً اس غزوہ احزاب جس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس صورت کے اندر, تو اس کا ذکر بھی آئے گا. اس کے اگر ہم غور کریں تو تین بیسک سبجیکٹس یا موضوع کہہ لیں ہمیں اس صورت میں نظر آتے ہیں. ایک تو اجتماعی آداب کہ ایک جماعت یا ایک قوم یا ایک فیملی یا کس طرح سے اس میں بیہیو کرنا ہے. ایک تشریعی احکام ہے کہ معاشرے کے اندر کون کون سا نظام کس طرح سے ہوگا, اور بعض پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات یعنی کہ مثلا غزوہ احزاب یا غزوہ بنی قریظہ وغیرہ کا جو ذکر آئے گا, اور پھر ان دونوں کے درمیان جو یعنی کہ ظاہر آف کورس جو منافقین کا ایک رول تھا وہ اس کی خاص اہمیت ہے, کوز احزاب کے بعد اس منافقت کی وجہ سے ہی بعد میں جو ہوا اور پھر بنی قریظہ پہ حملہ کیا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینی ہاؤ اگر اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان دس سورہ رفلی ہمیں دو قسم کے پوائنٹس ملتے ہیں جو خاص, جن کو ایک ایمفسس نظر آتا ہے سورت کے شروع میں ہی. وتب ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چار امور یعنی کہ آرڈرز کہہ لیں یا احکامات کہہ لیں, یہ یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں پہلا جو ہمیں آرڈر نظر آتا ہے وہ حکم کہہ لیں, چار امور جن کا حکم دیا گیا. پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں, واتق اللہ شروع میں ہی کہہ دیا, اتق اللہ اللہ سے ڈریں. اور اتق اللہ کے اوپر تو ظاہر ہے آف کورس پورا ایک لیکچر بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آنے والے دنوں میں, کیونکہ یہ ان اٹ سیلف از دا کرکس دا آئیڈیالوجی آف اسلام. لیکن یہاں بہرحال صورت خلاصے تک ہمیں محدود رہنا ہے, ریسٹرکٹیڈ رہنا ہے, تو ویل جسٹ موو آن. جو چار احکامات بیسکلی ان آیتوں میں نظر آتے ہیں کہ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں, دوسرا کافروں اور منافقوں کی جو آرا جو ان کی اوپینینز ہیں اس کو فالو نہ کریں, ڈونٹ گیٹ امپریسڈ. تیسرا یہ کہ وہی جو الہی جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے, وطب ما یوحا الیک جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کی اتباع کریں, اسے فالو کریں جو اللہ کہہ رہے ہیں. اور دا فورتھ پوائنٹ سمجھ میں جو آتا ہے کہ اللہ پر اعتماد اور یعنی ایک بھروسہ کریں, وتوکل وکفا باللہ وکیلا, توکل علی اللہ اللہ پر توکل کریں, اور کفا باللہ وکیلا اللہ از دا کافی ہے اللہ وکیل بننے کے لیے, کسی اور کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ایک اگر ہم اور پوائنٹ اس کے اندر پھر کی کریں کہ قرآن میں کہیں بھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا, یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریہ, یہ سب انبیاء کے ہم دیکھتے ہیں کہ نام جہاں پہ بھی آتے ہیں یا موسیٰ یا آدم سب انبیاء کے آتے ہیں قرآن پاک میں, لیکن یا محمد کہیں نہیں آتا. ہر جگہ یا ایو النبی یا طٰہٰ یا سین یا ایوہ الرسل کچھ بھی یا ایوہ الرسول, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन या मोहम्मद कहीं पे भी नज़र नहीं आता। एक इल्मी नुक्ता है जिससे नबी अलैहिस्सलाम की शान, क्योंकि वो सारे खातमुल अंबिया थे, और इसके ऊपर खातम के ऊपर तो आगे इंशाल्लाह बात तो ब्रीफली करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उनके अलावा सब अंबिया को या कह के खता, या इज़ अरबी ज़बान में अगर हम देखते हैं कभी, अगर किसी अरब कंट्री के अंदर ट्रैवलिंग हमारी हो, हम जाना हो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दूर से गाड़ी वाला, कभी कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई दूर से कोई बंदा रोड पे जा रहा है, उससे कोई रास्ता पूछना है तो कहता है या मोहम्मद, आज भी या अब्दुल्ला, उनका एक तकिया कलाम कह लें, या उनका एक लैंग्वेज, उनका एक बाजारी लैंग्वेज, उनकी स्ट्रीट लैंग्वेज इस तरह से है, तो या कह के पुकारते हैं ऐसे रैंडम बंदे को। लेकिन जिसे इज़्ज़त और बहुत अल्टीमेट, इससे ये मुराद नहीं कि उसी को बेइज्जती मुराद होती है, कुछ भी नहीं, लेकिन एक कैजुअल फॉर्म में इन ऑन एन इक्वल बेसिस जब कहते हैं तो या कह के पुकारते हैं एक दूसरे को आम अरब लैंग्वेज में, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के लिए एक बीच में अय्यू का लफ्ज़ लाते हैं और फिर कहते हैं या अय्युहा, अय्युहा का लफ्ज़ बीच में आता है एक डिस्टेंस, एक उसके लिए रिस्पेक्ट के लिए, एंड देन अन नबी। तो ये खैर एक नबी अलैहिस्सलाम की खसूसियत बार बार कुरान पाक में देखने को मिलती है। सेकंड, हमने दो पॉइंट्स डिस्कस करने थे, जिसमें फ़र्स्ट तो ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम के अहकाम, और फिर आगे हम चलें वर्स नंबर 4 पर, ये 3 पे ख़त्म होता है, तो हम देखते हैं मा जअलल्लाहु लिरजुल मिन قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل الى ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل। यह आयत नंबर 4 में हम देखते हैं कि जो जाहिलाना और एक पुराने ज़माने के इलिटरेट सॉर्ट ऑफ ख्यालात थे और कॉन्सेप्ट से, उनकी तरदीद यहाँ पे नज़र आती है, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है इन आयात में। उसमें मेन 3 किस्म के जो इनके ख्यालात थे या इनकी ओपिनियंस थी उस ज़माने में जाहिल अरब कौमों की, या जो भी जहालत के दौर में लोगों का बिलीफ था, वो ये पहला उसमें यह था कि एक सीने में बाज़ लोगों के उनका ख्याल था कि एक सीने में दो दिल होते हैं, और ये बिल्कुल उनका एक गलत कॉन्सेप्ट था जिसे अल्लाह ने बिल्कुल एब्सोल्युटली रद्द किया कि अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं रखे, और दिल ऑफ कोर्स एक ही होता है, क्योंकि वो दे यूज़ टू बिलीव कि भाई कोई ईमान से कैसे काफिर हो जाए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन्होंने कहा भाई दिल एक ही होता है, अल्लाह ने क्लियरली इनको कैटेगोरिकली रद्द किया, या उसमें ईमान होगा या कुफर होगा, और एक ही दिल में दोनों जमा नहीं हो सकते, या ईमान होगा या कुफर होगा, ऐसे नहीं हो सकता दोनों एक ही हों। और फिर ऑफ कोर्स आगे मुनाफिकीन की भी हम देखते हैं कि उन्हें भी रिजेक्ट किया जा रहा है, कि जिन्होंने कुफर और ईमान के दरमियान एक तीसरा निफाक का सॉर्ट ऑफ दर्जा सजेस्ट किया हुआ था, तो उनके बारे में भी आता है। और फिर एक सेकेंड अगर हम देखते हैं इनकी जो जाहिलाना तसव्वुरात या ख्यालात को, तो वो ये था उनमें से कि ये इनका ये बिलीफ था आज उस ज़माने में कि अगर कोई अपनी माँ को अंत आलिया का जहरी उम्मी, ये एक अरबी का एक सेंटेंस है बड़ा फेमस, अपनी यानी इसका मीनिंग, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज तुम मेरे ऊपर ऐसे हो जैसे मेरी माँ की पुश्त यानी कि बैक, अगर कोई अपनी बीवी को बोल देता था सेंटेंस कि यू आर टू मी लाइक माई मदर्स बैक, डोंट नो बट ये बस अंत आलिया का जहरी उम्मी, इससे उसका मतलब ये होता था कि वो इसकी बीवी से तलाक हो जाती थी और हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए हराम हो जाती थी। लेकिन कुरान ने ऑफकोर्स इसे रद्द किया कि नहीं, ऐसा ये बिल्कुल सेंसलेस किस्म का एक कॉन्सेप्ट आपका सेल्फ क्रिएटेड है, इसका कफारा दे दिया जाए और कफारा देने से बीवी हलाल हो जाती है। तो एक उस ज़माने के कॉन्सेप्ट को रद्द किया। और फिर थर्ड उनका यह जाहिर कॉन्सेप्ट ये भी था कि मुंह बोलो या जो बेटा होता है उसका हुक्म के वो बिल्कुल हकीकी बेटा जैसा होता है, दिया हुकुम अपना हुकुम जालकुम इनकी बातें, तो अल्लाह ने उसे भी रद्द किया कि नहीं मुंह बेला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। और इसीलिए फिर हम आगे देखते हैं कि ख़ास तौर से जो रूहानी बाप और रूहानी माएँ हैं उनके बारे में इस मुंह बोला बेटा का जो कॉन्सेप्ट है इसे रद्द करते साथ ही फिर आगे हम देखते हैं कि खास इसमें खसूसन जो हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु थे जो नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले क्योंकि बेटे थे, तो उनके बारे में कि वो आपके हकीकी बेटे नहीं हैं, और फिर ये ऐलान भी कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की कि आबा हम फ़ैक़वान हम फिर दीन मवालिकुम, ये नायतों में कि नबी अलैहिस्सलाम की जो अबूवियत है यानी कि ही इज़ अ फादर टू द इंटायर मुस्लिम उम्मा या इंटायर वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, अगर हम कहेंगे पूरे आलमीन में हर चीज़ हर शय के बाप हैं, तो ये उनका एक रूहानी टाइटल है। इसका मतलब जेनेटिक ज़ाहिर ऑफ कोर्स नहीं है, और जितनी भी उनकी अजवाज मुताहरात हैं वो ऑफ कोर्स पूरी उम्मत की रूहानी माएँ हैं। इससे एक बात भी समझ आती है कि ज़ाहिर है अब ये एक और आगे हुक्म आ गया कि अब वो क्योंकि रूहानी माएँ हैं पूरी उम्मत की, और उन नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी, यानी उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी, अब वो हराम हो गई हैं, वो किसी के ऊपर भी जायज़ नहीं किसी के लिए भी उनके उनसे निकाह करे। इससे एक बात का जो हम देखते हैं पता चलता है, वो सूरह बनी इसराइल के बिल्कुल शुरू में आई थी, जब अल्लाह सुबहानहु तआला ने कहा था सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला। ये के जो उस वहाँ पर डिस्कस हो चुका है उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक जो एक इस उम्मत मुस्लिमा का एक बेसिक अकीदा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम जितने भी अम्बिया कराम सलाम सब हयात हैं और अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, और वो नमाज़ पढ़ते हैं बाकायदा, और ये सब बातें हदीस से और इन आयतों से वाजे होती हैं। लेकिन यहाँ एक नुक्ता जो इल्मी समझ आता है कि क्योंकि उनसे निकाह हराम है, अगर वो सिर्फ रूहानी माएँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कोई रूहानी माँ हो, कोई गॉड मदर हो, कोई किसी के उस्ताद की बीवी हो, कोई किसी की अंकल की बीवी हो जो उसकी रूहानी बिल्कुल माँ हो, उसकी चाची की तरह हो, जो उसकी बिल्कुल माँ हो और उसकी तरबियत करे, और वो उसे बिल्कुल बेटा ही समझता हो हमेशा, और समझता वो भी अपने माँ ही समझता रहे, बट इन दी एंड उन दोनों का अगर उस बंदे का इंतकाल होता है तो उसके बाद उस औरत से उस बच्चे का निकाह हलाल और जायज़ होगा, हराम नहीं होगा। इवन दो वो करेंगे या नहीं करें वो तो उनका अपना है, लेकिन शरण ये नाजायज़ नहीं होगा। जबकि उम्महातुल मोमिनीन ये क्योंकि हराम है हमेशा हमेशा के लिए, सबसे इसका मतलब क्या है, और इसी एक दूसरी बात से भी इसकी ऑथेंटिसिटी होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्बिया की ला नूरिस के इनकी कोई विरास मीरास तकसीम नहीं होती, इनकी कोई जायदाद नहीं होती जो इनके फौत या विसाल के बाद तकसीम हो। और वो जाहिर है ये दोनों चीज़ें जो निकाह का हलाल होना किसी औरत का या किसी बंदे की विरासत का तकसीम होना, ये उस सूरत में होता है जब वो बंदा कोई भी शरण इस दुनिया से जा चुका हो, फौत हो चुका हो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि हमारा बिलीव है कि वो हयात हैं, जिसके दलाइल और सारी डिटेल्स वहाँ डिस्कस हो चुकी हैं सूरह इसरा में, लेकिन क्योंकि वो हयात हैं तो इसी वजह से उनकी वाइफ जितनी भी हैं, उनकी बीवियाँ, उनकी अहलियाँ उम्महातुल मोमिनीन, उनसे तमाम हमेशा हमेशा के लिए ज़ाहिर है सब मर्दों का निकाह भी हलाल नहीं हुआ, और ज़ाहिर है अम्बिया कराम की इसीलिए विरासत भी नहीं होती। तो खैर एनी हाउ इनके बाद आगे हम चलते हैं, तो ग़ज़वा अहज़ाब को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तकरीबन 19 के करीब आयात में इनमें, लेकिन हम की पॉइंट्स को सिर्फ ब्रीफली अगर देखना चाहें इंशाल्लाह, कि ये सबसे पहली बात इसके बारे में नोट करें कि ये 5th हिजरी में हुई थी, शवाल के महीने में, शवाल सन 5th हिजरी के अंदर ये वाक़िया हुआ, और जब मुशरिकीन के पास के बाद तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फ़ाइटर्स थे, जो बाकायदा ट्रेन फाइटर्स जिन्होंने मदीना का मुहासरा किया हुआ था, उसे चारों तरफ से घिरा हुआ था, और ये बहुत ही मेजर जो जंगजू मुख्तलिफ कबाइल थे उनसे ये लोग फाइटर्स और वॉरियर्स थे ये सब लोग, और इनमें ज़ाहिर है यहूद में भी बनू नज़ीर और बनू कुरैज़ा दो जो कबाइल जिन्होंने मुसलमानों से मुआहदे करके तोड़े, और उसके बारे में बहुत डिटेल जंगों के अलग वाक़यात हदीस में मिलते हैं। ऑफ कोर्स इन्होंने इन मुआहदों को तोड़ा और इनके साथ जाके तआवुन किया एंड कोऑपरेटेड विद द मुशरिकींस, और उन्होंने ज़ाहिर खुलम खुला इन माहिदों की खिलाफ वर्जी की जो कि पीस अग्रीमेंट्स मुसलमानों के और इन दो कबाइल्स के ख़ास तौर से हुए हुए थे, और मुसलमानों के पास सिर्फ हम नोट करें तो 3,000 के करीब लोग थे, सहाबा थे, जिसमें बहुत ज़ाहिर बड़े उम्र के भी थे, और सब फाइटर्स नहीं थे, सब ट्रेन नहीं थे उस वक्त। एनी हाउ फिर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही सजेस्टेड कि भी जहाँ पे मुहासरा या अटैक फ्रॉम द एनिमी ज़्यादा ख़तरा है, हम वहाँ पे एक खंदक खोद देते हैं, एक डेंच जिसको कहते हैं, खड़ा गढ़ा टाइप एक इस तरह का, दिस वॉज़ बिल्ट इन द साउथ वेस्ट, यानी कि शिमाल मग़रब की तरफ मदीना शहर के, मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक ये इस तरह की खंदक खोदी गई। आज भी उसकी बाज़ लाइंस कुछ वहाँ पे शायद मौजूद हैं, लेकिन द लास्ट टाइम आई चेक्ड वहाँ पे ऑलमोस्ट मैसिव रोड्स बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो इस पूरे इलाके में इसके कोई निशानात या कोई साइंस बहुत वाज़े तौर पे आम ऐसे इजीली नज़र नहीं आते। इससे ज़ाहिर है इस सूरत को भी सूरह अहज़ाब इसीलिए कहते थे कि ये लश्कर और ग्रोहों की, क्योंकि डिफरेंट जमातों की एक जंग थी। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं, इसीलिए सूरह अहज़ाब को और ग़ज़वा अहज़ाब को भी ग़ज़वा अहज़ाब इसीलिए कहा जाता है, इसको बैटल ऑफ द डेंच या ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है, खंदक खोदी गई थी। तो तकरीबन एक माह तक, वन मंथ इन लोगों ने, मुशरिकीन ने मुहासरा करके रखा मदीना शहर का, और इन द एंड अबू नुईम मसूद गतफानी की जो कोशिशें थी, यहूद और कुरैशी जो गतफानी लश्कर के दरमियान आपस में फूट पड़ गई बहरहाल। और उसी के साथ साथ एक अल्लाह का मिरेकल भी हुआ, एक तूफ़ानी आंधी आई, यानी ज़ोरदार तेज़ हवा चलने लगी सर्दी से कपकान, उसमें बहुत हदीस अहादीस में डिटेल में हमें ये वाक़ियात मिलते हैं और बहुत सहाबा की कुर्बानियों के वाक़ियात। एनी हाउ, तो उनके जो दुश्मन था, उनके इस फूट पड़ने से आपस में दो इन जो ग्रोहों के, दो जमातों के, और फिर ऊपर से अल्लाह की तेज़ हवाएं आंधियां से इनके जो जानवर सब मवेशी इधर उधर बिफरने लगे, उनके खेमे उखड़ने लगे और बहुत तेज़ हवा चली, तो उनके वो अपने पांव जमा के वहाँ नहीं रुक सके। यहाँ से एनी हाउ जब कुछ वो दुम दबा के भागे एंड दे केम बैक, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अभी अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ़ लाए और अपना ज़िरा जो उनका आर्मर था, ही वॉज़ टेकिंग इट ऑफ एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम के केम एंड सेड कि ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा मैं तो अपना ज़िरा उतार रहा हूँ, यानी कि अपना आर्मर, जस्ट टू यू नो द वॉर इज़ ओवर। ही सेड नो, अभी वॉर ओवर नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सेड कि नाउ यू अटैक बनू कुरैज़ा, जो वन ऑफ़ द ट्राइब्स जो हैं बनू नज़ीर और बनू कुरैज़ा में से। तो क्योंकि इन्होंने गद्दारी की थी, इन्होंने पीस अग्रीमेंट जो था, मुआहिदा था मुसलमानों से, वो तोड़ा था, और तो इसलिए हुक्म आया कि इन पर चढ़ाई करो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मशहूर हदीस है कि उन्होंने सहाबा से कहा ला तुसल्ली अन्ना अहदुकुम इल्ला बनू कुरैज़ा, तुम बनू कुरैज़ा तक पहुँचने से पहले नमाज भी नहीं पढ़ना, यानी कि इतना स्पीड से जाओ, मतलब कहने का यह था इतना स्पीड से इसी वक्त बनू कुरैज़ा पर हमले की तैयारी करो। एनी हाउ, फिर उसके बाद जो भी आगे डिटेल्स में आते हैं, और अल्लाह ताला ने इन आयात में इन दोनों गज़वात का हाल और जो मंज़र एक सॉर्ट ऑफ पिक्चर हमारे सामने रखी है, उससे एक तो मुसलमानों को और फर्दर खुशखबरी, एक बशारत सॉर्ट ऑफ दी जा रही है कि अनकरीब सूनर आप और भी तुम लोगों को फतुहात मिलेंगी, जैसे कि देखा फिर आगे फारस से लेकर रोम, बल्कि सैकड़ों अदर ममालिक जितने भी उस ज़माने में थे, रोम और पर्जिया, पूरे पूरे एम्पायर्स मुसलमानों के हाथों गिर गए। तो यही नबी अलैहिस्सलाम ने बहरहाल सॉरी अल्लाह सुबहाना व तआला ने इन आयात से हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि अल्लाह की एक पेशन गोई है कि जब तुम जमे रहोगे, ये गलबा यकीनी है, अगर तुम अपना कोई भी आने वाले वक्तों में भी अपनी हक पर जम जाएगा, तो फिर अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी, और गलबा यकीनी है, और किसी साहिब ईमान को इसमें शक नहीं होना चाहिए। बहरहाल जितने भी हालात बज़ाहिर जो देखने के हालात होते हैं, हम बार बार इस पर डिस्कस करते हैं, एक मटीरियल वर्ल्ड होता है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, अल्लाह की मदद जब आती है तो ये मटीरियल वर्ल्ड कहीं का कुछ बाकी नहीं रहता। एनी हाउ, ये 21st पारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो 20 यहाँ के एंड में और 22nd पारे के शुरू में अगर हम देखें तो ये अजवाज मुतहरात के बारे में कुछ आयात मिलती हैं। कैटेगोरिकली जब ये जो फतुहात पीछे, क्योंकि अहज़ाब का ख़ास तौर से जिक्र आता है, और पीछे फिर उससे पहले बदर और फिर ओहद के भी जो फतुहात विक्ट्रीज थी, जब ये कुछ विक्टोरियस मुसलमान होना शुरू हो गए, तो जो अजवाज मुतहरात थी, यानी कि बीवियाँ थी आप अलैहिस्सलाम की, उन्होंने हजूर से दरख्वास्त की कि हमारा कुछ जो नफका है, वजीफ़ा है, यानी कि जो हमारी महीना खर्ची कह लें या जो भी उनको ख़र्चे के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम देते थे घर चलाने के लिए, कुछ उसमें थोड़ा सा बढ़ा के इजाफ़ा कर दें अगर मुमकिन हो, को जब मुसलमानों पहले मुसलमानों की हालत ख़राब थी, गरीब थे, अब क्योंकि हालात अच्छे हो गए हैं और वी कैन अफोर्ड इट नाउ इन आवर वर्ड्स. तो इन इस मौके पर यह लास्ट आयात इस पारे की, और फिर अगले शुरू में हम देखते हैं कि इन दो बातों में से एक यानी कि इख्तियार करने का अल्लाह ने कैटेगोरी, एक तो पहले इन्हें तंबीह की कि या तो वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने के लिए जुदाई इख्तियार कर लें, भाई अपना यू वांट द मटेरियल वर्ल्ड, ओके फाइन, बट आपको नबी अलैहिस्सलाम से अलग होना पड़ेगा. कि जैसे कहा को ये आयत नंबर 28 14, या यो नबी यु कुल अजवाज का इन कुन तुन्ना तुरिदना अल हयात दुनिया वजीनता फतालैना उम्मत कुन्ना वसरह कुन्ना सराहन जमीला. 28 आयत में, इन आयत में बिल्कुल कैटेगोरिक अल्लाह ने कहा कि भाई या अगर इफ़ यू वांट द मटेरियल वर्ल्ड ओके देन सेपरेट योर सेल्फ, और अगर आप इस तंगी और इस हाल में खुश हैं जिस हाल में नबी अलैहिस्सलाम हैं तो यू कैन स्टे. बिल्कुल कैटेगोरिक इन्हें कहा गया, और जाहिर है उन्होंने आखरत को तरजीह दी क्योंकि वो तो थी उम्महातुल मोमिनीन, इस पूरी उम्मत की माएँ, उन्होंने आखरत को तरजीह दी. और इसीलिए फिर अजवाजे मुतहरात की फजीलत में तकरीबन 7 के करीब अगर हम गौर करें तो अहकाम दिए गए कि पहला ये कि मर्दों के साथ बात करते हुए बिल्कुल यानी कि पोलाइटली बात ना करें, दूसरा ये कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना जाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर के अंदर गुजारें, तीसरा ये कि ज़माने जाहिलियत की ख़वातीन की तरह अपनी जो जीनत है या अपना जो मेकअप है इसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना करें, बाहर दिखाएं ना, इसको इससे छुपा के रखें. चौथा ये, फोर्थ ये कि नमाज की पाबंदी करें, फिफ्थ ज़कात देती रहें, और छठा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें क्योंकि वही असल निजात का ज़रिया होंगे इंशाअल्लाह. और सेवन्थ जो लास्ट पॉइंट इनके बारे में दिया गया कि जो कुरानी आयात की जो तिलावत और हदीस है उसका मुज़ाकरा किया करें, आपस में इसकी बात किया करें इनके बारे में. और यहाँ पे एक इल्मी नुक्ता जो इसके बारे में ख़ास तौर से शायद मिलता है, जब कहा गया फ़ला तगज़ान बिलकौल फ़ैत मज़ीफ़ी कल्ब ही मरजुन वक़ुल न कौलम मारूफ़ा, यानी कि जब इन्हें कहा गया कि अपनी जीनत अपने इस यानी कि पर्दे का हुक्म एक तरह से कि दिखाएं ना लोगों को, तो एक इश्काल हो सकता था कि भाई कोई बंदा कह सकता है नहीं यार ये बंदा इससे तो कुछ नहीं होता एनी आओ, लेकिन फ़ैत मज़ीन फ़ी कल्ब ही मरजुन कि ये तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम्हें इसमें कोई फ़ायदा है, बल्कि ये कि जो तुम्हें देखने वाला होगा उसके कल्ब मरज़ उसके दिल में कोई मरज़ होगा और वो बुरी नज़र से तुम्हें देखेगा. एंड दिस इज़ अ फैक्ट, अगर आप ह्यूमन हम आपस में एनालिसिस करें तो एक मर्द का एक नॉर्मल हमारे सोसाइटी में क्या पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल रूल है कि ही लाइक्स टू स्टेयर एट वुमन, और इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. ये एक मर्द का बहुत अल्लाह ने एक निज़ाम ऐसा बनाया है कि इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि वो एक औरत को देख के अट्रैक्ट होता है, एक औरत उसे देख के अट्रैक्ट होती है. और इसी वजह से सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया था यगुज़ु अबसारहुम, मर्दों से कहा था अपनी आंखों को नीचे कर लो, किसी औरत को ना देखो, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट अल्लाह ने बनाई है. तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या उसके दिल में मर्ज़ होगा, वो ऑटोमेटिकली एक बुरी नीयत से तुम्हें देखेगा, चाहे तुम्हारी नीयत बिल्कुल बुरी ना हो, तुम्हारा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपने माइंड में, बट जो जिसके दिल में मरज होगा जो बाहर घूम रहा है रोड पे है उससे तो तुमने उसकी सोच को तो कोई नहीं रोक सकता. एनी हाउ इसके बाद मज़ीद इस सूरत के एंड में अगर हम गौर करें तो तकरीबन 7 मोर पॉइंट्स हमें ख़ास गौर करने को मिलते हैं सूरत के अंदर, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो इस सूरत की आयत नंबर 35 में जाके इन्नल मुस्लिमीन अवल मुस्लिमात अवल मुमिनीन अवल मुमिनात अवल क़ानितीन अवल क़ानितात अवल स्वादिकीन अवल स्वादिकात अवल स्वाबिरीन अवल स्वाबिरात अवल ख़ाशिईन अवल ख़ाशिआत अवल मुतसद्दिकीन अवल मुतसद्दिकात अवल स्वाइमीन अवल स्वाइमात अवल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ بہت ڈیٹیل میں جو مسلمان کی جو شخصیت ہے جو اس کو معاشرے میں یعنی کہ ایک پرومیننٹ نمایاں کر اور امتیازی ایک حیثیت دینے اور اس کی उसे एक पहचान कराने के लिए 10 सिफात अल्लाह ने बताई कि ये जो 10 सिफात हैं वो जिसमें भी होंगी वो दरअसल अल्लाह का चोज़न वन हो इसको कह सकते हैं, या क्योंकि कहा ना इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन, मुसलमान होगा सबसे पहली बात, ईमान होगा मुमिनीन वल मुमिनात, फिर कनात होगी इसके अंदर वल कानितात, यानी कि फजूल इसका माइंड डाइवर्ज नहीं होता होगा, बिल्कुल सेटिस्फाई होगा अपने उस पर, फिर सादिकीन के सिद्क होगा इसके अंदर, सच्चाई होगी, फिर सब्र होगा, खुशी होगा, और ये सदका करने वाला होगा, रोज़े रखने वाला होगा, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला होगा यानी कि जिना से बचने वाला होगा, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला होगा। एक तो इस आयत में हमें बहुत की ये पॉइंट मिलता है। दूसरा पॉइंट हमें ये जो पीछे बात आई थी मुंह बोले बेटे के हवाले से, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे जिनके बारे में अभी तस्करा पीछे भी आया, और जो उसका मुंह बोले बेटे का जिक्र शुरू में हुआ सूरत के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक फूफीजाद बहन थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी और इनकी आपस में शादी हुई, फिर समहा इनकी आपस में नहीं बनी और इनकी डिवोर्स हो गई, एंड देन ये क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से अल्लाह सुबहानहु व तआला ने खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया, और उसकी वजह ज़ाहिर ये थी कि एक जो गलत रस्म पीछे हम बात चली थी, उनका गलत बिलीफ था उसको तोड़ने के लिए, आयत नंबर 37 में वस्तकुल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका व ज़ौजका वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मा अल्लाहु मुब्दीहि व तख़शा अन्नास इला आखिरिल आयत। यहाँ पे बस उसी बारे में कि अल्लाह ने खुद इनका निकाह पढ़ा दिया, और ये कि मुंह बोले बेटे की जो बीवी होगी जब वो उससे अलहदगी इख्तियार कर लेगी और वो सिंगल होगी तो उससे निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है, शरण ये एक नुक्ता है अल्लाह ने समझाने के लिए। और यहाँ एक ज़िमनी तौर पे हम सॉर्ट ऑफ अगर नोट करें तो ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम और जो नबी अलैहिस्सलाम की जो मुखालफीन हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की साजिश में, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा करते हैं कसरत अजवाज का कि ये बहुत सारे इनकी इतनी सारी वाइफ्स थी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसमें अगर हम पहली बात देखें तो एक एंगल से तो दुनिया की जितनी भी थियोलॉजीज हमें मिलती हैं, रिलीजन्स मिलते हैं, जैसे बाइबल के बारे में इनकी क्रिश्चियन और जो ज्यूस स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि सोलोमन हैड सम 16,000 समथिंग वाइव्स, 16,000 से ऊपर बीवियां थी, हमारी थियोलॉजी नहीं उनकी थियोलॉजी, हमारी भी बल्कि मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रात में अपनी 120 वाइफ्स के पास गए, एंड ये वो एक डिटेल हदीस है कि एक के बाद इंशाल्लाह का और सिर्फ एक से उनका बेटा हुआ, बाकी 119 से नहीं हुआ, लेकिन तो उनका ये बात और उनकी बाइबल तो इससे भी 16,000 समथिंग कहती है। और फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर हम देख लें तो उनके अपने वो जो गॉड किशन या राम था, आई थिंक राम या किशन में से किसी किसी का कहीं नज़र से गुजरा, एक दफ़ा पढ़ा कोई कोटेशन के ही हैड सम सेवरल थाउजेंड के करीब, 16-17,000 उसकी भी ऐसी कोई फिगर आता है, इतनी वाइफ्स थी। तो थियोलॉजिकली 11 वाइफ्स होना तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एतराज़ बनता नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत सारी थियोलॉजीज़ में इस तरह की बातें हमें मिलती हैं, उस ज़माने का एक कल्चर था, एक पैटर्न था, उसे हम आज के ज़माने की जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद अगर हम देखें तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी पूरी जवानी अपने से डबल उम्र की खातून से शादी की, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो गालबन 40 साल के करीब थी और उनके ऑलरेडी किसी पुराने शौहर से तलाक हो गई थी, उनके पहले बच्चे मौजूद थे। इस खातून से नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हैप्पीली ही वॉज मैरिड। इट वॉज़ ओनली आफ्टर ही शी पास्ड अवे के नबी अलैहिस्सलाम ने शादी फरमाई, और उसके बाद भी जो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा जितनी भी अज़वाज मुतहरात नबी अलैहिस्सलाम की थी सब की सब वर नॉट कुंवारीज वर्जिन्स, दे वर ऑल बेवास एंड ऑल होम नबी अलैहिस्सलाम गेव मोर देन ही टुक फ्रॉम इन एनी वे शेप और फॉर्म। एनी हाउ थर्ड पॉइंट इस सूरत में हमें फिर नबी अलैहिस्सलाम की जो एक इम्तियाज़ी औसाफ कह लें या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, आयत नंबर 45 ऑनवर्ड्स हमें कुछ दो आयत तीन आयतों में, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि हमने आपको दूसरी उम्मतों पर क़यामत एक पांच इम्तियाजी कह लेंगे यहाँ पे हमें मिलेंगी नबी अलैहिस्सलाम के औसाफ़, कि दूसरी उम्मत और क़यामत के दिन गवाही देने वाला बनाए, और ये कि जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत यानी कि मुसलमान है, और जिन्होंने ज़ाहिर ईमान कबूल ना किया तो वो उम्मत दावत में दाखिल है कि आपने उन्हें दावत दे दी। अब ना मानना मानना और उनका अंजाम वो अल्लाह के हाथ में है। तो फिर अहले ईमान जो थे उसमें से मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत और जन्नत के बशारत देने वाले हैं ज़ाहिर है, और कफ़ार और फज्जार को अल्लाह के अजाब और हलाकत से आप डराने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी इस्लाह और इखलाक के जो अच्छे अखलाक हैं, अखलाक हुसना जिन्हें कहा जाता है, इस्तकामत की दावत देने वाले हैं आप उसके साथ। और दावत देना क्या, आपने दावत देने का ज़ाहिर हक अदा कर दिया, और क्यों ना करते, क्योंकि ये कोई दुनिया की दावत तो थी नहीं, ना ही कोई इक्तदार, कोई पावर, कोई पैसे, कोई माल, मटीरियल वेल्थ किसी चीज़ की, तो ना कौमियत, ना किसी रंग नस्ल कल्चर क्रीड कास्ट किसी इसकी तो जंग थी नहीं, बल्कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो खालिस सिर्फ़ अल्लाह सुबहाना व तआला की दावत थी, उसकी रज़ा के लिए थी, तो वो कामयाब क्यों नहीं होती। इसमें क्या शक है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी हैं उनके तमाम के में जो अमाल में सबसे अफजल अमल दावत ही है, ये खुद अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इन आयात में यहाँ पे फरमाया, और इससे ख़ास इसकी एक फजीलत मालूम होती है। और एक और ये कि आप अलैहिस्सलाम सिराजम मुनीरा, कि आप सल्लम के पुरनूर वजूद से जो है वो जुल्मतें भी और शुभात का इजाला होता है, उससे तो लोग मिसकनसेप्शन से कंसेप्शंस की तरफ आते हैं। और जाहिर है पीछे एक ओशन में बात चली थी कि इवन जुल्मत जो होती है इस यूनिवर्स का जो ओरिजिनल अगर हम देखें असल अंधेरा है, नेचुरली द यूनिवर्स इज़ डार्क, ये आज की साइंस भी हमें कहती है। वो तो फिर कोई लाइट जलती है जैसे मिसाल के तौर पे, या जब सूरज तुलू होता है तो वो इलाका जहाँ पे स्टार की रोशनी आ रही होती है वो लाइट अप हो जाता है, बाकी यूनिवर्स डार्क रहता है। तो नबी अलैहिस्सलाम क्योंकि रहमतुल आलमीन है, तो ये वो नूर का वो सरचश्मा है जो पूरी दुनिया के जो दिलों की अंधेरे हैं और जो जुल्मतें हैं उन्हें दूर करता है। फिर एक फोर्थ पॉइंट अगर हम गौर करें तो हमें आयत नंबर 53 और से लेकर ऑनवर्ड्स 55 तक कुछ तीन किस्म के आदाब का पता चलता है। यानी पहला ये कि अगर किसी के घर में दाखिल हों तो बग़ैर इजाज़त के दाखिल ना हों, और दूसरा ये कि जब अगर किसी की अब दावत पे गए हैं और अब दावत से फारिग हो गए, खाने वगैरह से फारिग हो गए, तो बेकार बैठ के फजूल बातों में मशगूल ना हो और वहाँ से उठ जाया करें ताकि मेज़बान को तकलीफ़ ना हो इससे। और थर्ड ये कि गैर महरम ख़वातीन जो है वो चीज़ मांगने की ज़रूरत अगर किसी से पेश आती है तो पसे पर्दा मांगें और बिला हिजाब किसी से बात ना करें। हिजाब का ये जो है फ़सअलुहुन्ना मिन वराए हिजाब, हिजाब के पीछे से बात करें, उसके सामने से बात बिल्कुल किसी से ना करें। तो एनी आगे आयत नंबर अगर 57-6 में हम देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म आता है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के नबी अलैहिस्सलाम पर दुनिया के तमाम अल्लाह सुबहाना व तआला खुद और उसके मलाइका भी सलात भेजते हैं, और तुम भी उन पर सलात दुरूद व सलाम भेजा करो। आपको ऑर्डर दिया गया, सल्लू इज़ एन ऑर्डर, अमर अरबी ज़बान में कहा जाता है ऑर्डर को, तो एक ऑर्डर का अरबी ग्रामर ग्रामर फॉर्म में अगर बात की जाए तो वो है, तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि दुरूद और सलाम भेजा करें नबी अलैहिस्सलाम पर। और ज़ाहिर है इससे नबी अलैहिस्सलाम की एक ताज़ीम और तकरीम और उसकी उनको एक एज़ाज़ दिया गया कि तमाम के तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं वो उन पर दुरूद सलाम भेजें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की जो हकीकत है वो ख़ुद हमारे लिए भी इज़्ज़त तकरीम और ज़ाहिर है मर्तबात बुलंद करने का, और जो बुराइयां हैं गुनाह हैं उनसे छुटकारे का एक नज़रिया है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अनु से रिवायत है कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था बहुत ही खुशी के आसार थे। साहबा ने पूछा कि क्या हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खुश लग रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरे पास फरिश्ता आया था, उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात से खुश नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 बार दुरूद भेजूंगा, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और 10 बार रहमत भेजेगा दुरूद भेजेगा मैं उस पर 10 बार रहमतें भेजूँगा। तो बहरहाल इस रिवायत से साहबा ने पूछा कि आप खुश नहीं हैं, तो फरिश्ते ने जब पूछा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं खुश हूँ। ये मुस्नद अहमद और सुनन नसाई में ये रिवायत मौजूद है, जो एक बार नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजेगा अल्लाह सुबहानहू व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगे, और जो एक मरतबा सलाम भेजेगा अल्लाह सुबहानहू व तआला उस पर 10 मरतबा सलामती भेजेंगे। फिर हर मुसलमान औरत के पर्दे का हुक्म आगे नज़र आ रहा है कि सब औरतों से हुक्म दिया जा रहा है कि पर्दे कुल या यो नबी कुल अजवाज का व बना दे का व नसाइल मोमिनीन, तमाम की तमाम अपनी औरतों से अजवाज अपनी बीवियों से अपनी बेटियां यानी कि जितनी इस उम्मत की बेटियां हैं और औरतें हैं व नसाइल मोमिनीन जितनी मोमिनीन की औरतें हैं इन सबको पर्दे का हुक्म कैटेगोरिकली यहाँ पर दोबारा दे दिया गया कि यौरफना वाला यो जीना व कान अल्लाह गफूर रहीमा। इन आयतों में युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिहिन्ना, तमाम अपने हिजाब अपने पर्दे ओढ़ लें, और जाहिर है कि हिजाब ऐसा हो उसके बारे में शराइत का ख्याल रखा जाए कि वो पूरे बदन पूरी बॉडी को कवर करे, ज़्यादा लूज ना हो, ज़्यादा थिन बारीक ना हो, और बहुत ज़्यादा मोतर यानी कि खुशबू वाला ना हो, और मर्दों से उसकी मुशाबहत यानी कि एक सिमिलैरिटी ना हो, और वो कुफार या मुशरिक औरतों की तरह एक ना हो, उनसे तशबी ना हो क्योंकि वो तशबी भी गलत है, और शोहरत की तरह कोई बहुत महंगा ब्रांडेड कोशिश की जाए कि ना पहना जाए, इनके ख़िलाफ़ क्योंकि अलग से वहीद आती है। और फाइनली लास्ट पॉइंट इस सूरत में जो हमें मिलता है वो अमानत का बोझ उठाने से इनकार की सूरत बयान की कि जब अल्लाह ने तमाम की तमाम आसमानों में ज़मीनों में बंदों को इस अपनी ये दावत का पहुंचाने का जो बोझ दिया तो ज़मीन आसमान पहाड़ सब ने अमानत का बोझ उठाने से इनकार कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ने, क्योंकि इंसान अकल और फ़िक्र और खैर और शर के दरमियान तमीज़ करने की सलाहियत रखता था, इसने ये बोझ उठा लिया। लेकिन मगर जाहिर है इंसान भी इसका हक अदा ना कर सका और ना कभी कर सकेगा। नेक्स्ट हम सूरह सबा पे जंप ऑन करते हैं, ये पीछे इनका कौम सबा का वाक्या बड़ी डिटेल में आ चुका है हुदूद के वाले उस किस्से में सुलेमान अलैहिस्सलाम के। एनी हाउ तो ये ऑर्डर के एतबार से 34th सूरत है कुरान पाक की, और नज़ूल के एतबार से 58th सूरत है, इसमें 54 आयात और 6 रुकू हैं। कौम सबा का वाक़िया ज़ाहिर है आयत नंबर 15 में हम देखेंगे, आगे आयत नंबर 21 तक क्योंकि कौम सबा का वाक़िया आएगा तो इसी नस्बत से इसे सूरह सबा कहा गया। और इसकी खसूसियत ये उन 5 सूरतों में से ज़ाहिर है क्योंकि इसका स्टार्ट ही हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फिल आख़िरति व हुवल हकीमुल ख़बीर, के अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी स्टार्ट हो रही है। ये उन 5 सूरतों में से है जिनकी स्टार्ट अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, और इस हमद व सना से स्टार्ट होने के बाद वो अल्लाह जिसने सारी मखलूक को ज़ाहिर पैदा किया, कायनात के लिए एक मुस्तहकम एक निज़ाम कायम किया और स्टेबल सिस्टम और निज़ाम जो पूरा उसको चलाने के लिए एक पूरी तदबीर और फिर सब वही उसकी खबर रखने वाला है, वही हकीम है वही खबीर है, ये इससे स्टार्ट हुई सूरत की। और जो दूसरी ज़िंदगी का फिर हम देखते हैं आयत नंबर 2 में वक़ाल लज़ीन कफ़रु ला तअतीन अस्सा, ये काफिर कहते थे कि भाई ये क़यामत नहीं आएगी, ला तअतीन अस्सा ये बुरा वक्त नहीं आएगा, तो उनको एक जो ये दूसरी ज़िंदगी का रद्द करने वाले थे कि आप अपने रब की कसम खा कर कहें कुल बला व रब्बी, या आप इनसे कहें अल्लाह की कसम क़यामत आएगी, ये उन्हें एक चैलेंज और एक धमकाना अंदाज में उन्हें बावर कराने की सेंस में कैटेगोरिक अल्लाह ने कहा फरमाया। और मज़ीद अगर इसमें हम गौर करें तो हमें जो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं دو، ایک شاکر اور ایک کافر کا ہمیں تقابل یعنی کہ موازنہ یعنی کہ کمپیریزن نظر آتا ہے. ایک طرف ظاہر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے جو کہ ایک شاکر شکر گزار، ہر طرح کا مال متاع، دنیا، پاور، پیسہ، ایوری تھنگ ان دیئر ہینڈز. دا گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل کے جو بانی، جو پائنیئرز ہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، وین دے یوز ٹو رول دا ورلڈ، اور دیٹ پیریڈ، وہ ایک طرف، اور پھر اس حال میں بھی وہ اللہ کے شاکر اور شکر گزار بندے، اور دوسری طرف ظاہر اہل سبا جو قوم سبا تھی وہ کافر قوم تھی. تو ان دونوں کے درمیان ایک کمپیریزن ہمیں ملتا ہے. پہلے دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورتی اور بیوٹی عطا فرمائی، اور جب وہ اللہ کی تسبیح یعنی کہ پاک اور وہ بیان کرتے تو پہاڑ ان پرندے تک ان کے ساتھ جھوم جاتے ہیں، ان کے ساتھ اسے انجوائے کرنے لگتے، اور جب وہ زبور پڑھتے تو سننا روایات میں آتا ہے کہ جانور ان کی قرآت سننے لگتے تھے، ان پر ایک سارٹ آف گریہ تاری ہو جاتا تھا. دے یوز ٹو گو، انہیں ان پر سکتہ تاری ہو جاتا تھا، ایون جانوروں پر. اور پھر آپ کو ظاہر ہے جو اللہ نے لوہا آپ کے ہاتھ پر نرم کرنے کا میریکل عطا کیا، اور وہ اس سے مضبوط زریں یعنی کہ آرمرز بناتے تھے اسی لوہے سے، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ہاتھ میں لیتے تھے، وہ لوہا پگھل جاتا تھا اسٹیل، اور وہ اسے مولڈ کر کے کسی بھی آرمر کے فارم میں بنا کے بیچتے تھے. دس واز مدر بزنس کہہ لیں، یا مین ان کا جو کام تھا جس سے وہ اپنا کماتے تھے. اور پھر آگے ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام انہی کے بیٹے، انہیں تو اللہ نے ان پر اور فضیلتیں عطا فرمائی، انہیں تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی ہوئی تھی. پیچھے گزر چکا ہے سورہ نمل میں چونٹی سے اس کا واقعہ، یا حدود کا جو واقعہ آتا تھا جس سے ان کی بات چیت کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. تو خیر یہ ان سے بات چیت کرتے تھے، اور ان کے پاس جو تانبا جو ہوتا ہے، پیتل، برونز، یہ اسے ایسے پگھلا دیتے تھے جیسے پانی بالکل لکوڈ فارم میں، اور پھر جو اس شیپ وے اور فارم لینا چاہتے تھے وہ لے لیتے تھے. ایون جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھیں. آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ایئر کرافٹ ان کے پاس تھے، اور وہ یہاں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اوشنز کے پرابلی انہیں منٹوں میں لے جاتے ہوں گے. پتہ نہیں کون سے، اب جیسے آج کے زمانے میں F-16 فائٹرز، B-52 بامبرز، اتنی ہائی اسپیڈ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس اپنے پلیس آف جہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا ہوتا ہے آ کے دوبارہ لینڈ وہیں کر جاتے ہیں ود ان 12-14 آورس. تو آج کل کے زمانے میں تو اسے سمجھنا کچھ مشکل بات نہیں. بہرحال یہ دونوں بہت ہی شکر گزار بندے تھے اس سب کچھ ہونے کے باوجود. اور دوسری طرف اگر ہم غور کریں، اگر آیت نمبر 15 میں آن ورڈس لقد کان لسبا فی مسکنہم آیت جنتان عن یمین و شمال و کلوا من رزق ربکم و اشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور. آیت نمبر 21 تک جائے گا سورہ آل یہ آل سبا کا جو قصہ ہے، اور وہ یوں بیان ہوا کہ یہ ظاہر ہے کافر تھے اور سرکشی کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے حق کو. تو اللہ نے انہیں بہت ہی رزق کی فراوانی دی تھی، انہیں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے پاس زمینیں تھیں زرخیز، اور ان کی ڈیٹیلز کچھ جو یمن میں تھا ان کی ساری سلطنت، اور پھر باغات بھی اللہ نے انہیں بہت عطا فرمائے تھے، اور باقاعدہ پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز وہاں پہ، جسے ایک کچھ جو ہسٹورینز نے ریکور کیا جسے سد معارب کے نام سے بھی ہسٹورینز نے لکھا ہے کچھ. تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور انہیں اینڈ میں اللہ کا عذاب آیا. وہ بند جو انہوں نے سد مارے بھی تھا غالباً، یا جو بھی جس باپ کا ذکر آتا ہے، وہ ٹوٹ گیا، اور اس کا جو پانی تھا اس نے آگے پورے ان کے علاقے میں تباہی مچا دی، فلڈز آ گئے، اینڈ کب سب لوگ وہاں پہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ناشکری کی وجہ سے. تو ناشکری ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اور ایک آخری اس کے بعد اگر ہم نوٹ کریں آیت نمبر 22-27 تک آن ورڈز، تو ہمیں ایک عقلی اور نقلی جو دلائل ہوتے ہیں ان کی تردید، یعنی کہ جیسے غور کریں، کل عدو الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر. کہ جو اس طرح کے عقلی اور جو نقلی دلائل سے اللہ نے باقاعدہ تردید کی ان مختلف قسم کے اشکالات کی اور مسکنسیپشنز کی، کہ کبھی ان سے اگر کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو تو اور مشکل کشا مانتے ہو، تو ज़ाहिर है ये बुला तो सकते नहीं है, कभी तलकीन के असलूब में इनसे सवाल किया जाता है कि बताओ तुम्हें आसमान और ज़मीन में कौन रिज़्क देता है, अल्लाह ही देता है ज़ाहिर है, अल्लाह के अलावा तो कोई रिज़्क देने वाला है नहीं, उससे ये भी नहीं मुकर सकते, तो ना अपने माबूदों को फेक बुला सकते हैं ना अल्लाह की इस रिज़्क देने को झुठला सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसकी जो बुनियावी बुनियादी वजह है वो सूरह सबा में वो ये समझ आती है कि ये इनकी गिना है, यानी कि इन्हें इस पर इतना नाज था, दे वर सो प्राउड ऑफ इट, कि इनका ख्याल था कि हमारे जैसे जो असहाबे माल और औलाद को ना दुनिया में अजाब हो सकते हैं ना आखरत में। इसका बहुत डिटेल में सूरह कहफ के अंदर जो फर्स्ट दो मुसलमान मर्दों का जिक्र आया था असहाबे कहफ के वाक़े के बाद, वज़रबल्लाह मसल रजुलैन ने, वहाँ पे इसके बारे में बहुत डिटेल आई थी कि वो ये गिना वाले मसले में जो शख्स था और उसका भी यही ख्याल था, ला रद्दतु इला रब्बी लाजिदन खैरम मिन्ना मुनक़लबा, के मेरे पास दुनिया में इतना कुछ है कि अल्लाह आखरत में भी मुझे देगा, वो वही कॉन्सेप्ट इनका भी था और उसका भी, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो जबकि वहाँ एक मुसलमान गालबन था और इसीलिए अल्लाह ने उससे एंड में कहा था, लम उसने अपनी ज़बान में कहा, रोया वो, या लैतनी लम मुशरिक बि रब्बी अहदा, तो ये काफिर कौम थी, वहाँ पे मुनाफिक था या एक बहुत अच्छा मुसलमान नहीं था, बहरहाल दोनों के लिए एंड रिज़ल्ट अल्लाह ने अच्छा ना नहीं किया। और फिर आखिरत को दुनिया पर कियास करने का मसला एक अगर हम आगे गौर करें आयत नंबर 36 के अंदर, तो उससे ये समझ आता है कि कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिरु वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून, कि अल्लाह ही है जो सबको रिज़्क़ देना है, जिसको चाहे जितना दे ये अल्लाह देने वाला है, और यही अल्लाह ने फरमाया जिसके लिए चाहे रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। ये अक्सर लोग जानते नहीं हैं, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, इंसानों को जो लोग इसके ऊपर निगरान समझ लेते हैं या उसकी हाथों में समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। फिर उस पे फ़ख्र और इनाद पे दोबारा आयत नंबर अगर 46 में हम गौर करें, कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तकूमू लिल्लाहिल मस्ना व फरादन सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नतिन इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैना यदै अज़ाबिन शदीद, के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने पर जो ये चीज़ इनको आमादा करती है, और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून और दीवाना कहने से बाज नहीं आते, इनके बारे में अल्लाह सुबहान ताला फरमा रहे हैं कि आप इनसे फरमा दीजिए, मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले मुतादिर हो जाओ, फिर गौर व फिक्र करो, तुम यकीनन इस नतीजे पर पहुँचोगे कि तुम्हारे साथी यानी हजूर अलैहिस्सलाम को कोई जुनून नहीं है, वो तुमको सख्त अजाब आने से पहले डराने वाला है, तुम इससे बच जाओ, या बैन यदई अजाबिन शदीद, इस शदीद अजाब से वो तो बचाने के लिए तुम्हारे ही भले की बात कर रहा है। और फिर चाहत के दरमियान एक जो पर्दा है लास्ट आयत, वाहिला बैना व बैना मा यश्तहून कमा फ़ौला बिश या इहम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फ़ी शक्किम मुरीब, के आखिरत में जो ईमान कबूल करना चाहेंगे लेकिन उनकी ये चाहत और इनके दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया जाएगा, चुनाचे वो ईमान से महरूम ही रहेंगे, ईमान पर आना ना आना ये अल्लाह सुबहानहू व तआला के हाथ में होगा, इनके हाथ में नहीं होगा। यहाँ की सूरत ख़त्म होती है, कल इंशाल्लाह सूरह फातिर से स्टार्ट करेंगे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।